सभी का स्वागत करते हैं हम लोग आज श्रीमद् भागवतम क्लास की जगह आज हम लोग दो आचार्यों के जीवन को पढ़ेंगे और भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की आज स्नान यात्रा भी है पुरी में, तो वो भी बहुत बड़ा महोत्सव है जहाँ पर कि आज पूरी दुनिया इकट्ठी होगी दर्शन करने के लिए भगवान का, तो उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, जैसा कि कुछ लोग यहाँ नए भी हैं तो उनको बता दें कि पद्म पुराण के अनुसार बताया जाता है कि चार संप्रदाय प्रमाणिक हैं और उसमें एक है ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और एक कुमार संप्रदाय, चार। और यही चार संप्रदाय बताए जाते हैं प्रमाणिक हैं और इन्हीं प्रमाणिक संप्रदायों से ही भक्ति का जो है प्रचार प्रसार शुरू हुआ पूरी पृथ्वी पर। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि संप्रदाय विहीना ते मंत्र निष्फला यतः, अर्थात संप्रदाय के विहीन अगर कोई व्यक्ति मंत्र ग्रहण करता है या पूजा इत्यादि करता है तो वो निष्फल मानी जाती है। क्योंकि जैसे हम लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराने से पहले स्कूल का जो है ऑथेंटिसिटी देखते हैं, उसका नाम देखते हैं और उसके बाद किसी अच्छे स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराते हैं। ऐसे ही चलते फिरते कहीं पर नहीं डालते, देख कोई घर में ट्यूशन का बोर्ड लगा के बैठे तो उधर नहीं डालते ना कि इधर तेरे को डिग्री भी मिलेगा बेटा, इधर ही कर, एक घंटा ही पढ़ाते हैं ये सर, तो उधर तो 8 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। या वो कई बार लिखा होता है 7वीं 8वीं फेल 10वीं पास करें, आप चाहोगे कि उधर भी ना भेजें बच्चों को, है ना, क्योंकि उसकी डिग्री की कोई खास वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर किसी ने किताबें दुकान से लेकर पढ़ ली और सब कुछ कर लिया तो स्कूल की डिग्रीज नहीं मिलती अच्छी अच्छी नहीं। उसी प्रकार जब हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो ज़्यादातर क्योंकि ज्ञान नहीं होता इसलिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी को भी गुरु बनाकर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने का प्रयास करता है। और शिष्यों की तो बात क्या करें, अगर गुरुओं की बात करें तो उन्हें भी जीवन का लक्ष्य पता नहीं होता और क्या करना है, जीवन क्यों मिला है, प्रामाणिक संप्रदाय क्या होता है, और इस प्रकार जो है वो खुद तो जो है अलग से भ्रमित तो रहते ही हैं और जितने लोग उनसे जुड़ते हैं वो भी भ्रमित रहते हैं। क्योंकि समाज में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिष्य फैंस तो मिल ही जाते हैं। अगर आप अपने बॉलीवुड या हॉलीवुड की भी बात करें तो घटिया से घटिया हीरो के भी फैन होंगे, है ना, जिसको नाचना नहीं आता होगा उसके भी फैन होंगे। तो हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है इस संसार में, इसलिए सबकी दुकानें अच्छी चल रही हैं। और हम देखते हैं कई बार कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता तो उन लोगों को लगता है कि ये वाला मार्ग बहुत अच्छा है। धर्म के मार्ग में तो अंधविश्वासी बहुत हैं इस देश में, कुछ भी करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत चमत्कार सीख लेंगे, कुछ हाथ की कला सीख लेंगे तो लोग जो हैं उसी को भगवान मानने लगते हैं और भगवान की तरह उसकी पूजा होती है। हमने देखा भी है और सुना भी है, लोगों की कई ट्रिक्स भी देखी हैं जो छोटी मोटी कलाओं से लोगों को भ्रमित करते हैं। छोटा छोटा चमत्कार दिखाकर व्यक्ति देखता है कि अरे इसने ऐसा गायब कर दिया तो शायद मेरे दुख और कष्टों को भी गायब कर देगा ये। वो कहता आओ बच्चा मैं तुम्हारे कष्टों को गायब करूं, वो उसका सारा पैसा गायब कर देता है। तो क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं फेथ जाना ही है, क्योंकि सबके अंदर कहीं ना कहीं श्रद्धा है, तो इसलिए समाज में धर्म का बिजनेस जो है हर व्यक्ति करना चाहता है और इसीलिए धर्म का पतन भी हुआ, इसीलिए लोगों का धर्म से और साधुओं से विश्वास भी उठ गया। क्योंकि जब उन्होंने देखा अरे जिनकी हम पूजा करते थे, जिनके आश्रम में हम जाया करते थे, इनकी तो फोटो टेलीविजन में आ रही है, तो कोई साधना या संस्कार पे लेक्चर नहीं आ रहा होता उनका, वो जी न्यूज या 24 न्यूज में उनकी खबर आ रही होती कि ये पकड़ेगा ये काम करते हुए। तो लोगों का बड़ा जो है हृदय दुखी होता है। और इसी प्रकार कई बार लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाता है कि छोड़ो जब सारे ही ऐसे हैं तो फिर हम क्यों करें। तो हम बता रहे थे प्रमाणिक संप्रदाय क्या महत्व, कि जब कोई प्रमाणिक संप्रदाय में आता है जहाँ पर कि शास्त्रों में ही वर्णन मिलता है कि ये संप्रदाय इस प्रकार प्रमाणिक गुरु परंपरा के द्वारा इस भगवत ज्ञान को नीचे उतार रहा है, तो उस संप्रदाय से लिया गया ज्ञान या उसमें की गई भक्ति या लिया गया मंत्र पूरा फलीभूत होता है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार बाहर के लोगों का पतन हो रखा है या वो भक्ति पतन उसके लिए करते हैं, इस संप्रदाय में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां दिख सकती हैं, लेकिन जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो पूर्ण है। तो इसलिए इन संप्रदायों में व्यक्ति को चाहिए कि पता करे और उन्हीं संप्रदायों में मंत्र दीक्षा ले और भगवत भक्ति में आगे बढ़े। तो ये जो संप्रदाय है जिसमें हम बात कर रहे हैं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है, चार में से एक जो प्रमाणिक है, और जो कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, इस प्रकार ये गुरु परंपरा चलती हुई हमारे पास नीचे पहुंच रही है। और उसी गुरु परंपरा में चैतन्य महाप्रभु भी आए, जो कि स्वयं राधा कृष्ण के युगल अवतार थे 500 साल पहले, और उन्हीं के परिक्रमों में अकेले नहीं आए, सांगो पांगो सत्र पार्षदा, उनके बारे में श्रीमद् भागवत में 5000 साल पहले लिखा गया कि वो अकेले नहीं आएंगे, अपने पार्षदों के साथ आएंगे, अपने एसोसिएट्स के, क्लोज एसोसिएट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनके साथ रहते हैं, राधा कृष्ण जो हैं उनके साथ आए। तो वही सब परिकर जब महाप्रभु यहाँ थे तो उनके साथ आए। और एक किताब है जिसका नाम है गौर गुरुण देश दीपिका, जिसमें कि उन सारे पार्षदों का आध्यात्मिक जगत में अर्थात श्री श्री राधा और कृष्ण की जो लीलाएं ऊपर घटित होती हैं रोज आध्यात्मिक जगत में, उन लीलाओं में वो जो परिकर उनके साथ आए थे यहाँ पर, उनका क्या नाम था और उनका आध्यात्मिक स्वरूप क्या था ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जो महाप्रभु के साथ आए थे तो उनमें से आज दो भक्तों का जिनका नाम लिखा है यहाँ, श्री मुकुंद दत्त और श्री श्रीधर पंडित, इनका तिरुभाव दिवस है। मतलब ये जो थे, तिरुभाव दिवस का मतलब होता है जिस दिन वो लोग इस भूमंडल पर महाप्रभु के साथ या उनके जाने के बाद अपनी लीलाओं में रहे और उसके बाद उन लीलाओं का समाप्त कर कर वापस आध्यात्मिक जगत में श्री श्री राधा कृष्ण के धाम में वापस अपनी सेवा में चले गए। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात? तो ये वो परिकर है। और ये पूरा का पूरा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जैसे हमने बताया महाप्रभु के बाद से, तो जितने भी एसोसिएट्स थे वो सब श्रीमती राधा रानी की, अगर इस संप्रदाय में देखें तो उनके विषय में लिखा कि वो सभी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य गोस्वामीगण या भक्तगण, वो सभी के सभी ज़्यादातर प्रमुख जो हैं मंजरियाँ थी, जो कि श्रीमती राधा रानी की मेड सर्वेंट्स जिन्हें कहते हैं 13-14 साल की, और कई ग्वाल बाल भी थे भगवान श्री कृष्ण के, जो 12 ग्वाल बाल हैं ना मुख्य, उनमें से कई वो भी थे। तो सारे परिकर आए थे अलग अलग रूप रख के यहाँ पर, और उनका जो ध्येय था वो ये कि महाप्रभु की उस लीला को उसमें हेल्प करना और धीरे धीरे उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस गौड़ीय संप्रदाय में का जो ज्ञान है लोगों तक पहुँचाना, उस लीला को संपन्न करना, ताकि उनके आचरण से, उनकी लीलाओं से जो ग्रंथ लिखे जाएं, जो कथाएं हों, जो उसमें चमत्कार दिखे, वो सब चमत्कार और उनकी लीलाओं को भक्त लोग पढ़कर उन लीलाओं का स्मरण कर सकें और उनके अंदर भी उत्कंठा हो सके कि महाप्रभु की लीलाओं में फिर से हम लोग जा सकें या श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर सकें। तो उसमें हैं आज जिनका तिरुभाव है श्री मुकुंद दत्त, तो इनके विषय में हम पढ़ेंगे। श्री मुकुंद दत्त गंगादास के टोल में श्री निमाई पंडित के सहपाठी थे। निमाई पंडित मतलब चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है, बचपन में उनको निमाई पंडित कहते थे। पंडित इसलिए लगाते थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शास्त्रों में निपुणता थी, और निमाई नाम इसलिए था क्योंकि वो नीम के वृक्ष के नीचे शशि माता के यहाँ प्रकट हुए थे, तो इसलिए उनका बाल्यकाल का नाम था निमाई। मुकुंद की वाणी अत्यंत सुरीली थी तथा उन्हें संगीत के तालों एवं रागों की जटिलताओं का ज्ञान था। उनके मधुर कीर्तन नवदीप के समस्त वैष्णवों को आह्लादित करते थे। गौर प्रभु की मनोदशा को समझते हुए वे उनकी भावनाओं के अनुकूल गीत गाते थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं मुकुंद जो थे उनको सारे राग और उन सब तालों की जटिलताएं मालूम थी। आजकल जिस प्रकार का साउंड हम सुनते हैं, जिस तरह के सॉन्ग्स हम सुनते हैं, उनमें शुरुआत तो हो सकती है कि इन्हें कोई राग हो, लेकिन उनकी जटिलताओं को इतना जटिल कर देते हैं वो लोग, और साउंड्स में जितने सारी वेरिएशंस कर कर आवाज़ को पतली करना, मोटी करना, इस प्रकार निकलना जैसे कि कुछ काम हो रहा है ना, कहीं से आप किसी को मारा तो आवाज़ निकली, तो ऐसा भी एक सॉन्ग बनाते हैं तो वो भी हिट हो जाता है। गाने वाले भी वैसे ही और सुनने वाले भी वैसे, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है रागों को, तो इसलिए जो कुछ गाया जाता है उन सबको अच्छा लगता है। बस साउंड जो है ना अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ करके जिसमें कि लगे कुछ खतरनाक सा बढ़ रहा है, कर्ण प्रिय लगता है, तो लोग उसमें उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं। और ऐसा सॉन्ग अगर आदिवासी क्षेत्र में बजा दिया जाए तो उनको लगेगा ये तो हमारे यहाँ का गाना है, उधर कैसे बज रहे हैं क्योंकि उन्हीं बीट्स पर जो है आजकल के सारे सॉन्ग्स बनते हैं। तो महाप्रभु के हृदय को जानकर, उनके भावों को जानकर मुकुंद जो हैं राग को गाते थे, उनकी मनोदशा को समझते हुए। चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद के कीर्तन के मध्य संन्यास लिया, अर्थात जब कीर्तन चल रहा था उसी समय उन्होंने संन्यास लिया। उन्होंने पुरी में श्री चैतन्य के एक अत्यंत विनीत अनुयायी के रूप में उनकी सेवा की। जब महाप्रभु चैतन्य पुरी में थे तो भी उनकी सेवा की मुकुंद जी ने। एक बार श्रीवास पंडित के आवास पर चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद के अतिरिक्त समस्त भक्तों को शुभाशीष दी। महाप्रभु ने उनकी अवहेलना की क्योंकि उन्होंने भक्ति देवी जो भक्तिदात्री हैं के प्रति अपराध किया था। मुकुंद ने जब भी कर्म ज्ञान तथा मायावाद दर्शन तक के अनुयायियों से वार्ता की तब उन्होंने भक्ति को भी उन्हीं विषयों का स्तर पर रखा। ये घटना है जब महाप्रकाश लीला चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की थी शिवा सांगन में। महाप्रभु ने एकदम एक सिंहासन पर बैठकर सब भक्तों को बोला, आज जो भी तुम्हारी इच्छा है मैं वो पूरी करूंगा, आज सबको मैं कृष्ण प्रेम दूंगा। और इस प्रकार के स्वरूप में आकर महाप्रभु ने सबको बुला बुलाकर प्रेम देने का प्रयास किया। इसमें उनकी खुद की माता शची माता भी थी। जब वो आई तो उनको कहा इनको नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक अपराध किया है अद्वैत आचार्य के प्रति। लेकिन बाद में जब शची माता ने अद्वैत आचार्य के चरणों को छूकर अपने मस्तक पर लगा लिया तो महाप्रभु ने कहा ठीक है अब खुश हूं मैं। हरिदास ठाकुर जी को भी बुलाया उस लीला में और उनको दिखाया कि भैया उस दिन जब आप हरिनाम ले रहे थे और 22 बाजारों में आपको पीटा जा रहा था, मैंने तो सुदर्शन छोड़ दिया था उन लोगों को मारने के लिए। क्यों मार रहे थे वो लोग? क्योंकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से थे और उनके हरिनाम में बड़ी रुचि थी, इसलिए वो चाहते थे कि हरिनाम करना छोड़ दे और मुस्लिम धर्म को भी अपना के रखे, तो इसलिए उनकी पिटाई की जा रही थी। लेकिन उन्होंने कहा भी नहीं, आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर डालोगे तो भी मैं भगवान के नामों का जप नहीं त्यागूंगा, तो इसलिए मार पिटाई हो रही थी, 22 बाजारों में मारने को कहा। तो सुदर्शन चक्र भी जो है वापस चला गया क्योंकि हरिदास ठाकुर ये कह रहे थे कि भगवान इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, तो इसलिए उनको मारा नहीं सुदर्शन चक्र। और वो हंटर पड़ते रहे उनकी कमर पर, तो भगवान को महाप्रभु ने बताया कि जब वो कोड़ों से आपको पीट रहे थे और आपने सुदर्शन को वापस भेज दिया तो मैं क्या करता। तो महाप्रभु ने भक्त की रक्षा करने के लिए अदृश्य रूप में हरिदास ठाकुर जी के ऊपर अपने को कवर कर लिया, ऐसे करके उनको कवर कर लिया। और जो भी हंटर पढ़ रहे थे किसको पढ़ रहे थे? चैतन्य महाप्रभु। तो उस प्रकाश लीला में महाप्रभु ने हरिदास को दिखाया, अपनी चदर निकाली और कहा देखो मेरी, उन्होंने अपनी पीठ दिखाई और उसमें हंटर्स के वो सब निशान थे जो हरिदास ठाकुर को मारे जा रहे थे, जिसे देखकर हरिदास ठाकुर विहल होकर गिर पड़े। तो महाप्रभु ने इस प्रकार रक्षा की थी। उसी लीला में ये मुकुंद जी की भी बारी आई कि भाई मुकुंद भी खड़े हैं, ये तो आपके एसोसिएट हैं, इनको भी दो ना कृष्ण प्रेम। तो महाप्रभु ने कहा खबरदार अगर मुकुंद की बात करी, क्यों नहीं दूंगा उसको कृष्ण प्रेम? क्योंकि वो जिस भी जगह जाता है, जिस भी संगठन में बैठता है, अगर मायावादियों के साथ बैठा है तो मायावाद की बात करेगा, कहेगा मायावादी परम है, सब बराबर है। और ज्ञानियों के साथ बैठेगा तो ज्ञानियों की बात करेगा, कर्मकांडियों के साथ बैठेगा कर्मकांड, तो कहते हैं मुझे वो पसंद नहीं, इसलिए मैं जो हूं मुकुंद को कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। हम बोलते ना हम बड़े फ्लेक्सिबल हैं, है ना, हम अगर उस सोसाइटी में बैठते हैं तो उस सोसाइटी में भी हम चले जाते हैं, और उस सोसाइटी में बैठते हैं तो उस सोसाइटी के हो जाते हैं, और जब मंदिर आते हैं तो फीडबैक ढूंढ कर मंदिर भी आ जाते हैं, तो हम लोग उसमें भी हाथ डाल देते हैं। वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, ही इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जो है बड़ी नुकसानदेह है, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम। वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, गंगा गए स्नान करना चाहिए, यमुना गए स्नान करना चाहिए, बट कहने का मतलब है कि जिस भी फिलॉसफी को सुना और उसी को अच्छा बता दिया, जहां के जिस संगठन में बैठे, जिस संघ में बैठे, उसी के हो लिए, तो ये ठीक नहीं। भक्तों का सिद्धांत क्लियर होना चाहिए, हम कौन है, भगवान कौन है, सृष्टि कैसे हुई, भगवान और देवताओं में क्या अंतर है, और भगवान के धाम जाने का रास्ता क्या है, ये सब पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं मायावादियों के बीच में बैठे आप सब भगवान हो, उसको अच्छा लगता है, फील गुड की भावना आती है कि हाँ मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, हम सब भगवान हैं, बस भूल गए हैं, वापिस याद करना है कि हम क्या हैं, भगवान हैं। इसी प्रोसेस को, इसी की साधना करनी है, और जिस दिन आपको पता चल गया कि आप भगवान हैं तो बस फिर क्या है, आनंद ही आनंद। तो इस प्रकार मायावाद जो है फैला हुआ है समाज में, तो इस प्रकार के संघ से बचना। तो मुकुंद ने मुकुंद को बोला कि भैया तुम्हें तो मैं ना कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, तो बड़े नाराज हुए भक्तों ने कहा प्रभु जी दे दीजिए इनको, ये भी आपके एसोसिएट हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो मैं कम से 10,000 सालों तक कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। कितने? मुकुंद ने जैसे सुना कि 10,000 सालों तक नहीं मिलेगा लेकिन उसके बाद मिल जाएगा, तो मुकुंद प्रभु बाहर जाके नाचने लगे, हर्षोल्लासित उल्लासित हो गए और खूब नाचने लगे, हरी हरी करने लगे। भक्तों ने कभी क्या हो गया, कहते रहे भाई 10,000 साल के बाद तो बारी आएगी ना, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो महाप्रभु को ये बात अच्छी लगी, महाप्रभु ने उनको बुलाया और कहा तुम्हें मैं अभी दे देता हूं, नो वरी। तो ऐसे थे मुकुंद, और इस लीला में जो है महाप्रभु ने उनको बताया कि शुरू में तुमने तिरस्कार किया लेकिन बाद में उनको कृष्ण प्रेम दे दिया। उनको बोला एक गिरगिट की भांति रंग परिवर्तन करते हुए बोलते थे, गिरगिट की तरह तुम कभी इधर हो जाते कभी उधर हो जाते हैं। मुकुंद भक्तों के समक्ष भक्ति का महिमा गान करते तथा तदुपरांत कर्मियों के भक्तों के संग व्यर्थ की बातें करते, विषय चर्चा करते तथा मायावादियों के संग में निर्विशेषवाद पर ही वार्ता करते। मुकुंद ने भक्ति देवी के प्रति अपने घोर अपराध के प्रायश्चित हेतु आत्मघात के विकल्प का चयन किया। उन्होंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा अगर महाप्रभु मुझे जो है कृष्ण प्रेम नहीं देंगे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि क्या किसी भावी जन्म में उन्हें उनकी कृपा प्राप्त होगी। क्षमा करना यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लिखा है, मैंने कम बोल दिया। बोला तुम्हें 10,00,000 जन्मों के पश्चात मेरी कृपा प्राप्त होगी। यह जानकर कि उन्हें एक दिन महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, मुकुंद प्रसन्नता पूर्वक फुदक फुदक कर चिल्लाने लगे, मात्र 10,00,000 जन्म। अरे वाह, नाचने लगे, कूदने लगे। मुकुंद का भक्ति भाव तथा संकल्प देख चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया। महाप्रभु ने मुकुंद को आशीर्वाद दिया एवं अंगीकार कर लिया। बोलो मुकुंद प्रभु की, मेरे वचनों में तुम्हारी श्रद्धा एवं विश्वास से तुम्हारे सकल अपराध तुरंत नष्ट हो गए। महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारे को मेरी बात पर इतना विश्वास है, मतलब 10,00,000 जन्म भी आपको कुछ नहीं लग रहे और उससे इतने ज्यादा खुश हो आप, तुम्हारे इस विश्वास को देखकर तुम्हारे सारे अपराध समाप्त हो। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि व्यक्ति को चाहिए कि वो शास्त्रों पर और भगवान की वाणी पर पूरा विश्वास करे। इस विश्वास से क्या होगा, हम लोगों का भक्ति में उन्नति बहुत तेजी से होगा। विश्वास जिसका जितना ज्यादा रहेगा वो व्यक्ति उतना अधिक भक्ति में आगे बढ़ेगा। श्री कृष्ण लीला में वे एक मधुर गायक मधुकंठ हैं, अर्थात वह व्यक्ति जिसका कंठ मधुर है, भगवान की लीला में उनको मधुरकंठ के नाम से जानते हैं। और उनकी जो समाधि है वो 64 समाधि क्षेत्र में है, ये वृंदावन में जगह है, कुछ भक्तों ने दर्शन किया होगा कभी गए, कुछ 84 इसमें 64 समाधि क्षेत्र में, हाथ खड़ा करें, कुछ भक्त हैं जाना चाहिए। वहाँ पर हमारे सारे आचार्यों की जो है समाधि है और एक अच्छा स्थान है जहाँ पर प्रार्थना कर कर हम लोग अपना फायदा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं है तो दूसरे आचार्य के विषय में इसमें नहीं है, तो इसलिए फिर हम लोग आज बाकी जगन्नाथ पुरी में जो स्नान यात्रा है उसके विषय में चर्चा करेंगे। जगन्नाथ पुरी जो है चार धामों में से एक धाम है और जगन्नाथ पुरी में बताया जाता है कि जितने लोग भी वहां चल रहे हैं ये उपस्थित हैं, देवता लोग जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सबकी चार चार भुजाएं हैं, मतलब सब मुक्त आत्माएं घूम रही हैं। वास्तव में तो बताया जाता है कि धाम के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति है तो बहुत ही भाग्यशाली है, धामवासी है और धाम के अंदर ही है इसलिए मुक्त है, और अगर शरीर का त्याग भी करेगा तो भगवान के धाम चला जाएगा, चाहे वो वृंदावन धाम हो चाहे दूसरे अन्य धाम सब। तो चार जो धाम बताए जाते हैं इन चार धामों में या कई और भी विशेष धाम है जिसमें बताया जाता है कि रामेश्वरम में कहते हैं कि भगवान शयन कर रहे हैं, वहां पर अगर भगवान के विग्रह का दर्शन करोगे महाविष्णु का तो आप देखेंगे कि वो जो हैं विग्रह जो है लेटे हुए उस पर, किस पर, शेष पर, और उन्होंने जो है फन उठा रखा और भगवान जो है उनको बिस्तरा बनाकर एक अच्छा बेड बना के सो रहे हैं, लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही हैं और भगवान का दर्शन क्योंकि बड़े बहुत बड़े विग्रह हैं यहाँ से लेकर इससे भी थोड़े से और बड़े हो सकते हैं इस पिल्लर से, तो उनका दर्शन करने के लिए तीन दरवाजे हैं। एक है फेस की साइड में जहाँ से आप फेस का दर्शन कर सकते हो, दूसरा है बीच में जहाँ से आप नाभि कमल का दर्शन कर सकते हो, तीसरा है चरणों के पास, दरवाजा खोलते हैं तो चरणों का दर्शन होता है। तो बताते हैं कि भगवान वहां विश्राम करते हैं उस धाम में और जगन्नाथपुरी में भगवान खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कई बार 56 भोग लगता है भगवान को, और अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भगवान के लिए जो भोग बनता है कितना बड़ा तो उनका किचन है, कितनी तो उसमें हांडियां हैं और कितने तो कुक हैं उनको बनाने वाले, जो कि पूरी एक अलग विंग या ब्राह्मणों की जिनका काम ही खाली भगवान के लिए 12 महीना खाना बनाना, और किस प्रकार जो है वहां पर हमारी तरह गैस LPG और ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर लकड़ियों पर जो है खाना बनता है भगवान के लिए और बड़ी बड़ी हांडियां रखी होती हैं, और क्या होता है कि एक हांडी के ऊपर 6-7 हांडियां और होती हैं, हांडी पे हांडी, और जब नीचे से आग लगती है तो बताते हैं जब चावल बनता है इसमें तो सबसे पहले ऊपर का चावल पकता है, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, फिर इस प्रकार करके सारा भोग भगवान का तैयार होता है, और इतनी प्रकार के दालें सब्जियां मिष्ठान ये सब भगवान को रोज भोग लगता है। तो आप देखोगे तो भगवान को जो खाने को मिलता है उधर और भगवान जो कृपावश छोड़ देते हैं वो जो छोड़ा हुआ भोजन है प्रसाद, वो एक बाजार है जिसका नाम ही आनंद बाजार है। अभी खाकर तो हर कोई आनंद में रहता है ना, तो उस नाम ही इसका आनंद बाजार है, और उस आनंद बाजार में वो सारी हांडियां पहुंच जाती हैं और वहां पर वो पुजारी लोग जो हैं उस हांडी को भगवान को कुछ डोनेशन देकर वो हांडियां लेते हैं, और हम जैसे पहुंचे हुए भक्त, भूखे पहुंचे हुए भक्त भी कुछ डोनेशन देकर उन हांडियों का प्रसाद खाते हैं। कितने लोगों ने आनंद बाजार का आनंद लुटा है ये देखो कितने सारे भक्त हैं, वाह वाह, याद आ रहा है कुछ। तो जमीन पर बैठकर वो सब लोग प्रसाद कहते हैं और बहुत विशेष प्रसाद होता है, दिल कर रहा है तो बोलते बोलते भी। पिछली बार हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे तो रथ यात्रा थी, बड़ा मन कर रहा था कि ट्रेन में तो 30 घंटे के सफर में कुछ मिला नहीं खाने के लिए, तो बहुत भूखे थे और इच्छा थी कि वहां जाके ही खाएंगे, फिर पता चला तो पता कि भाई अब तो भगवान को बीमार थे और भगवान तो अंदर थे तो अब तो सीधा रथ पे बैठेंगे तो कुछ आजकल भोग नहीं लग रहा भगवान को, तो खाने के लिए कुछ था नहीं, मंदिर बंद था। तो फिर हम लोगों ने गुंडीचा मंदिर वाले दिन हम लोग अलारनाथ चले गए। अलारनाथ भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है। ये वो मंदिर है जब 14 दिनों के लिए भगवान बीमार हो जाते हैं और दर्शन किसी को नहीं देते, तो उस समय महाप्रभु विरह में भगवान को ना देखने के कारण अलारनाथ जाके भगवान का दर्शन करते हैं। तो हम वहां गए और जैसे ही 1 बजे पहुंचे, हमें लग रहा था 1:30 बजे कि अब तो दर्शन बंद हो गया होगा, और अंदर पहुंचते ही पुजारी ने कहा आइए आइए आइए। हमें क्या हो गया, कहते हैं प्रसाद खाइए। अरे वाह अरे वाह, वहां पर वही सब हांडियां बड़ी हुई थी जो भगवान को भोग लगा था, और बिठा कर उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया गरम गरम प्रसाद खिलाया, तो जो है अंतरात्मा तृप्त हो गई। तो भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट किए क्योंकि 2 दिन से हम भूखे थे और भगवान का प्रसाद खाना चाह रहे थे। तब फील हुआ कि जगन्नाथपुरी और अलारनाथ में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वही स्वाद, वही सब्जियां, वही चावल, वही खीर, तो बड़ा अच्छा लगा। और फिर मालूम पड़ा कि महाप्रभु चैतन्य जो हैं किस प्रकार विरह फील करते थे जगन्नाथपुरी में, और किस प्रकार उनकी संतुष्टि होती होगी अलारनाथ जाके। तो उस दिन बड़ा अच्छा लगा हमें, देखिए हमारे लिए प्रसाद रखा था, और प्रसाद खाने के बाद पेट भरने के बाद कहा जी अब आइए दर्शन करिए, सुंदर दर्शन खोल कर दर्शन कराया। तो पूरी वो धाम है जहाँ भगवान खाते हैं, और द्वारका वो जगह है जहाँ भगवान राज करते हैं, है ना। 16,108 रानियाँ और इतना बड़ा महल, और हर जगह जो है उनकी जय जयकार हो रही है, तो राज करते हैं। और बद्रीनाथ जो चौथा धाम है, वहां पर भगवान क्या करते हैं, तपस्या करते हैं नर नारायण के रूप में। तो इस प्रकार जो है इन चारों धामों में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा ऐसे कई लोग, अब तिरुपति भी गए होंगे तो लोग बोलते हैं कि तिरुपति में भगवान कमाई करते हैं क्योंकि वहां पर जो है लोग उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, और बिजनेस में इजाफा होने के बाद जो है भगवान को जितना बताया था उतना देकर आते हैं। हमारे पीछे भी बालाजी का विग्रह है, आप भी कुछ सोच सकते हो और हमको रोने के लिए दे सकते हो, बोले हरे कृष्णा। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा में ये स्नान यात्रा मनाई जाती है। बताया जाता है कि हमारे जो, आपको पता ही होगा ये कथा कि महा ये जगन्नाथपुरी की, कि किस प्रकार इंद्रदुम्न जो थे, राजा थे जो सतयुग के, उनकी उनकी बड़ी इच्छा थी नील माधव का दर्शन करने की। तो फिर बाद में वही, बहुत लंबी कथा है, वही नील माधव भविष्यवाणी करते हैं कि मैं अब दारू ब्रह्म के रूप में मिलूंगा। दारू ब्रह्म का मतलब है कि लकड़ी के भगवान। और फिर उनको प्राप्त हुए वो बड़े बड़े वृक्ष के तने, और बाद में उन्होंने एक व्यक्ति को लगाया जो कि वास्तव में विश्वकर्मा ही थे, जिन्होंने भगवान के विग्रहों को काव किया कई दिन तक, और उसके बाद उन विग्रहों की स्थापना करी। तो बताते हैं कि जिस दिन ये विग्रह प्राप्त हुए थे, तो वही दिन जो है जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस भी है, उनका बर्थडे। तो आज जो स्नान यात्रा है इसी दिन के विशेष उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और भगवान ने इंद्रदुम्न जी को बताया था कि आप जो हैं मेरे जो स्नान यात्रा करिए। और इसके पीछे कई कारण हैं, एक कारण ये भी बताया जाता है कि भगवान स्नान यात्रा क्यों करवाते हैं, क्योंकि पूरा दिन बिजी रहते हैं खाने पीने में, लोगों को दर्शन देने में, लीलाओं में, तो लक्ष्मी जी को बिल्कुल समय नहीं देते थे भगवान। तो लक्ष्मी जी बहुत परेशान थी कि भाई आप दुनिया के लिए तो हो, हमारे लिए हो ही नहीं कमाल के, तो आप जो है हमें भी समय निकाल कर दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, कुछ ऐसी लीला करते हैं जिससे कि आप और मैं लगभग 15 दिन के हॉलीडे में चलेंगे, लेकिन बिल्कुल समाज से एकदम बायकॉट, कोई दर्शन नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कोई कुछ नहीं, हम और आप बैठेंगे आराम से, दैट्स। तो इस प्रकार जो स्नान यात्रा है, तो भगवान की इच्छा थी कि जो है लक्ष्मी जी साथ रहें। लेकिन इसके अलावा और भी बताया जाता है, क्योंकि भगवान ने इंद्रदुम्न को कहा था कि आप हमारे को स्नान कराइए, और स्नान के लिए भी बताया जाता है 108 बड़े बड़े घड़े जो हैं पॉट्स, उसमें जो है चंदन का सुगंधित जल भर के रखा होता है, और भगवान का अभिषेक किया जाता है। इस समय आज के दिन ही अगर आप आज घर जाके टेलीविजन खोलेंगे और जगन्नाथपुरी का अगर दृश्य आ रहा हो, तो उसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट साइड में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रहों को बाहर ले आते हैं आज के दिन, और ऐसे एक मचान पर, एक ऐसी ऊंचाई पर रखते हैं सुंदर सजावट कर, जहां से कि सड़क पर खड़े हुए हजारों लोग भी भगवान का दर्शन कर सकें। वैसे तो उस मंदिर में हमने बताया कि केवल हिंदू लोग जा सकते हैं और जो नॉन हिंदूज हैं उनका वर्जित है वहां जाना, लेकिन इस लीला को कोई भी देख सकता है, सड़कों से खड़ा होकर देख सकता है। तो लोग वहां से देखते हैं, बहुत सुंदर दर्शन भगवान का। और लगभग 108 पॉट्स रखे हैं वहां पर चंदन के, सुगंध जल के, उससे भगवान को नहलाया जाता है। लेकिन बताया जाता है कि इस समय भगवान की ये नहाने की इच्छा क्यों हुई, उसके पीछे कारण क्या है कि इस समय भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के विरह में, वृंदावन के विरह में, इतने ज्यादा विरह की अग्नि में संतप्त होते हैं कि उनसे रहा नहीं जाता। विरह की अग्नि को वो शांत नहीं कर पाते, क्योंकि एक समय था जब वो श्रीमती राधा रानी के साथ थे, अभी वो नहीं है उनके साथ, जैसे द्वारका में है या कहीं है, तो कितने लंबे समय तक विरह में रहे। इधर बताते हैं कि श्री कृष्ण ने जब विरह में थे तो श्रीमती राधा रानी और गोपियां सदैव सड़क पर ही नजर लगा के रखते थे कि कृष्ण कब आएंगे, क्योंकि बोलकर गए थे कि बस मैं अभी गया और अभी आया, बस मथुरा जा रहा हूं और कंस को जो है अभी मारकर वापस आ जाऊंगा। तो उनको लगा ठीक है बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए गए, लेकिन गोपियों को और श्रीमती राधा रानी को बोलकर जाना कि मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन मथुरा में भी कुछ समय बिताने के बाद, कंस का उद्धार करने के बाद, राज्य को सेट करने के बाद, भगवान वहां से द्वारका चले गए। और बताते हैं ये सेपरेशन लगभग 100 वर्षों का था, इस भौम लीला की बात कर रहे हैं। जब भगवान प्रकट लीला करते हैं तो उस लीला में भगवान ने लगभग 100 वर्षों से अधिक का विरह की अग्नि में खुद भी जले और श्रीमती राधा रानी को भी जलाया। उस विरह में बताते हैं कि गोपियों की हालत ऐसी हो गई थी, खाना पीना सोना सब भूल चुकी थी। ऐसे हम लोग दशा देख सकते हैं उस परिवार में, उस स्त्री की या उस पुरुष की, जब किसी का कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव या हस्बैंड और वाइफ जब किसी को त्याग के चले जाते हैं या शरीर त्याग देते हैं, तो उस समय जैसी स्थिति रहती है, आंखों का बुरा हाल, अश्रु बहा रहे हैं, रो रहे हैं और मतलब खाना पीना सब भूल चुके हैं, जैसे एक समय की बताते वैसी स्थिति होती है, वैसी स्थिति गोपियों की रही लगभग 100 वर्ष। बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी की स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि उनकी जो अंगूठी थी वो अब कड़ा बन गई थी हाथ का, मतलब इतनी कमजोर हो गई थी श्रीमती राधा, और जो कड़ा था वो उठकर यहां आ गया था या उतर जाता था, जो हाथ की चूड़ियां होती थी, कपड़े लूज हो गए थे, शरीर एकदम बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो गया था, विरह में आंसू के अलावा मतलब आंसू भी सूख चुके थे अब आंखों से, और आंखें ना ये कभी झपकी नहीं थी ऐसे। उस रास्ते को देख करके कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे, तो आंखें भी नहीं झपकते थे लोग। तो एक बार पत्र लिखा ललिता जी ने कि अब तो जो है राधा रानी गई, बस नाक पर रुई लगाकर देखते थे कि प्राण है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है बहुत जो है विरह का जो है हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, हम तो ये बस चर्चा कर रहे हैं और भौतिक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो विरह का अग्नि है ये वास्तव में बहुत अच्छा लेवल चाहिए इसको समझने के लिए। तो वो उसी जब आए कृष्ण तो उनको बोला कि राधा रानी ने देखो 100 वर्ष में आंखों को भी नहीं झपका, रात को सोई भी नहीं, आंखें तो भी खुली रहती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी स्थिति भी यही थी, मैं था बेशक वहां पर 16108 रानियों के साथ, लेकिन निद्रा तो मुझे भी कभी नहीं आई, आंखें तो मैंने भी कभी नहीं झपकी। तो दोनों तरफ का प्रेम था। तो यही कृष्ण यहां जगन्नाथपुरी में श्रीमती राधा रानी के विरह में अग्नि के समान जो है तप रहे हैं। अब उस अग्नि को शांत करने के लिए ये 108 पॉट रखे हैं उनको स्नान कराने के लिए। और जो स्नान भी कराएंगे ये जो दैतापति है, ये जो पुजारी हैं, ये एक विशेष पुजारी है साबर जाति के, जो कि विद्यापति और जो ललिता जी थी जिन्होंने इन विग्रहों की मतलब खोज की थी, नील माधव का दर्शन किया था, उन्हीं के जो ब्राह्मण जाति थे उन्हीं के परिवार के लोग वंशज आज भी वो दैतापति कहलाते हैं। जिनको भगवान का विशेष वरदान या कृपा प्राप्त है ये वो है दैतापति, और भगवान की सेवा करते हैं हर समय इन विशेष दिनों में। और भाव क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को गोपियां जो हैं अभिषेक करा रही हैं उनकी विरह को अग्नि को शांत करने के लिए, तो सारा का सारा जल भगवान पर डाला जाता है। और जब इस प्रकार अग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं भगवान और गर्म होते जाते हैं और उनकी जो है अग्नि बढ़ती जाती है। और हृदय की अग्नि को शांत करने के लिए बाहर का जल क्या करे, बट फिर भी तो इस प्रकार बाहर होते हैं और बाहर हवाएं तेज चलती हैं तो बताते हैं कि इस समय भगवान जो है बीमारी का बहाना करते हैं, भैया अब जो है बहुत पानी में नहा लिए तो अब हम लोग, भगवान कहते हैं अब हम बीमार हो गए। तो अब जो है लगभग 14 दिन तक भगवान को एक ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां पर भगवान कहते हैं राजा को कि भाई मुझे भी दर्शन करने भी ना आए मेरा, हमने बताया था लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और इसे बताया था, लेकिन अभी वो कहते हैं दर्शन करने भी कोई ना आए। और खाने, क्योंकि बीमार है तो खाने पीने के लिए भी डाइट भी बदल देते हैं फिर पुजारी लोग, अभी वो चावल वगैरह सब बंद, अभी क्या खिलाएंगे उनको, नारियल जूसेस और फ्रूट्स, और है ना फ्रूट भी वैसा जो कि बिना छिलके वाला, बुक में लिखा है कि बिना छिलके वाला क्यों, क्योंकि वृंदावन के भाव, वृंदावन में जो फल लगते हैं उनमें छिलका नहीं लगता, सीधा तोड़ो और खा लो तो ये भाव रहता है। तो भगवान को भी वो याद दिलाने के लिए जो फल रखते हैं उनके आगे बिना छिलके के रखते हैं। तो इस प्रकार भगवान की डाइट ये चीज होती है और लगभग 14 दिन तक भगवान बीमारी का बहाना कर अंदर रहते हैं, दवाई भी देते हैं, डॉक्टर भी आता है नब्ज पकड़ने के लिए, भगवान का हाथ पकड़ने के लिए चेक करता है कि बुखार कितने हैं और क्या है, और दवाइयां भी लिख कर देता है, ये सब पिलाओ जी, ये खिलाओ जी, सारे डाइट चेंज कर देते हैं। और इस बीच में जो है अब क्योंकि भगवान को दर्शन देना है तो उसको बोलते नव सर एक शब्द है, उसमें भगवान का रीपेंट किया भी जाता है क्योंकि बहुत पानी डाला था भगवान के ऊपर, तो अभी जो है भगवान को रीपेंट करने का भी मौका आता है। तो भगवान को बड़े सुगंधित और खुद के बने भक्तों के द्वारा जो है ऐसे ऐसे पेंट्स होते हैं जो भगवान का कलर, श्रीमती यशोदा जी भी हैं वहाँ पर, सॉरी वो सुभद्रा जी, तो उनको भी पेंट करते हैं पीले रंग से, भगवान बलदेव जी को वाइट कलर से पेंट करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ जी को ब्लैक कलर से, तो सुंदर ढंग से पेंट करते हैं और सुगंधित छिड़कते हैं। और उसके बाद फिर जो है और भी कुछ फेस्टिवल्स हैं जैसे पोहंडी इत्यादि होता है। अब 14 दिन बीत चुके हैं, भगवान अब क्या है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बता रहे हैं इस बुक में कि स्वकीय और परकीय दो भाव होते हैं। स्वकीय मतलब कि जिसमें एक किस्म से पति और पत्नी का, जैसे कि भगवान जब द्वारका में थे तो वहां पर स्वकीय रस का आस्वादन करते थे, है ना, पति और पत्नी स्वकीय, एक ऐसा रिलेशन जो कि शास्त्र सम्मत है, पति पत्नी का रिलेशन, तो स्वकीय भाव का। और वृंदावन में भगवान परकीय भाव, अर्थात जो इस भौतिक जगत में जिसे पाप माना जाता है या अच्छा नहीं माना जाता, तो परकीय भाव ये उस रस का आस्वादन वृंदावन में करते हैं। मतलब कि विवाह किसी से हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला प्रेम जिसे बोल सकते हैं अपने शब्दों में, तो भगवान जो है वहां पर गोपियों के साथ इस तरह के, गोपियों के पति हैं, पिता हैं, बच्चे हैं वृंदावन में, लेकिन उसके बाद भी हृदय किसको दे रखा है, भगवान कृष्ण को। और यही अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में करता है परकीय भाव, तो यहां का परकीय जो है पाप कहलाता है ना, और ये करना भी नहीं चाहिए हमें। तो इस प्रकार स्वकीय और परकीय भाव का बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि लगभग 14 दिन 15 दिन तो वो लक्ष्मी जी के साथ थे तो स्वकीय रस का आस्वादन किया, लक्ष्मी जी के साथ पत्नी है भैया। और अभी वो हंडी कर रथ पर बैठेंगे और कहां जाएंगे, वृंदावन की ओर। वैष्णव गौड़ी वैष्णव कहते हैं जो गुंडीचा मंदिर है उसे वृंदावन की तुलना करते हैं कि ये वृंदावन है। तो अब भगवान को बिठाकर अब भगवान किस लिए जा रहे हैं, पहुंडी करते हैं भगवान को नचाते कुदाते लाते हैं, उनको लाते हैं और हिलाते डोलाते झूमते हुए, जैसे शराब पियो किसी ने, कभी देखें आप जाकर रथ यात्रा वाले दिन दिखते हैं, सब लोग छतों पर टिकट लेकर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती है जगह, और काफ़ी घंटों खड़े होने के बाद सुबह से लोग बैठ जाते हैं और मंदिर के अंदर का दर्शन करना होता है क्योंकि भगवान को वहाँ से बाहर निकलना होता है। और बहुत सारे पंडास जो हैं उनको पकड़ते हैं और झूमते हुए लेकर आते हैं, मतलब भगवान जब चल रहे होते हैं, अगर देखिएगा, देखते होंगे आप लोग तो उसमें देखिएगा, टेलीविज़न में भी देखिएगा और जाकर भी देखिएगा, तो भगवान को ऐसे झूमते हुए लाते हैं जैसे इन्होंने शराब पी रखी है, और झूमते झूमते स्टेप बाय स्टेप उतरते हैं धीरे धीरे, कभी आगे लाते हैं कभी पीछे करते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है ये देखने का। भगवान पूरी मस्ती में होते हैं समय, और कहाँ जा रहे हैं वो, रथ पर झूम रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, राधा रानी से मिलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो भगवान वृंदावन जा रहे हैं और वृंदावन का भाव है, और झूमते 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 उनको बहुत ही मुश्किल से, बलदेव जी तो आराम से आ जाते हैं, थोड़ा सा झूमते हैं नाचते हैं कूदते हैं ले आते हैं, सुभद्रा मैया का तो भी ठीक ठीक है, सुभद्रा मैया भी आराम से आती, मैं जा रही हूँ भैया के साथ वृंदावन जा रही हूँ, तो आराम से आ जाती है। लेकिन जगन्नाथ जी इतने ढीठ हैं, वो खूब पसीना निकलवाते हैं लोग, खूब जो है भक्तों को खड़ा रखकर टांगे दर्द करवाते हैं और खूब दर्शन देते हैं मस्ती में कि देखिए कैसे झूमता झूमता मैं आ रहा हूँ, काफी देर लगा कर आते हैं, चढ़ते भी नहीं है, रथ पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, रथ का जो है 15-20 फीट ऊंचाई पर रथ होता है और सीढ़ियां बनी होती हैं लकड़ी की, तो उसमें जगन्नाथ जी को चढ़ाना होता है और उसमें भी जो पसीने छूटते हैं भक्तों के, नहीं चढ़ते भगवान, राजा है वो जगन्नाथपुरी के, तो मन में आया तो चलेंगे, मन में आया तो नहीं चलेंगे, आप जितना मर्जी दम लगा लीजिए। रथ पर आते हैं भगवान और रथ पर आने के बाद फिर कहाँ जाते हैं, वृंदावन की तरफ कूच करते हैं, और जब वृंदावन की तरफ ये हजारों लाखों लोग सामने जो हैं खड़े होते हैं रस्सी पकड़कर भगवान को वृंदावन ले जाने के लिए, और इतना इतनी भीड़ होती है, बताना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन भीड़ बहुत होती है, नहीं तो लोग जाएंगे नहीं, बहुत भीड़ होती है, और जो प्रयास करते हैं रस्सी खींचने का, मतलब बहुत मुश्किल होता है कि रस्सी हाथ में लग भी जाए, टच भी हो जाए, क्योंकि जैसे एक खंभे से लेकर दूसरे तक खंभे हैं कि रस्सी है, और हमारा पूरा हॉल इस रस्सी को पढ़ने का प्रयास करे तो मतलब 6 आदमी के पीछे खड़ा हुआ आदमी ऐसे ऐसे करने के लिए बिल्कुल हाथ में नहीं आते, पुलिस वाले भी काफ़ी होते बचाने के लिए। और फिर जब जगन्नाथ जी को खींचते हुए लेके जाते हैं, खूब कीर्तन होता है आगे, खूब नाच रहे होते हैं, जैसे हमारी इस्कॉन की रथयात्रा में होता है उस तरह नहीं होता, इस्कॉन की रथयात्रा में आपने देखा होगा कि सुंदर रथ में भगवान बिठाते हैं, भक्त लोग रस्सी पकड़ के खड़े हैं, भक्तों की गाने की कीर्तन की टोली बीच में है, और कीर्तन करते करते हम लोग भगवान के सुंदर नाश्ते कूदते लेके जाते हैं। उधर में क्या है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, प्रशासन बहुत होता है, गाड़ियां बहुत चल रही होती है, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस और बड़े सारे वॉलंटियर सीटियां बजा रहे हैं, तो उस तरह कीर्तन नहीं चलता, बड़े वाहनों को नहीं आने देते, कोई अपना छोटा मोटा साउंड ला के थोड़ा सा बजा के कीर्तन कर ले तो चलेगा, तो इसलिए वहां पर सैकड़ों पार्टियां होती हैं जो भगवान के आगे कीर्तन कर रही होती है, और इस्कॉन से भी बहुत सारी पार्टीज पहुंची होती है, वो खूब कीर्तन करती है, तो भगवान को लेके जा रहे थे। पिछले कई वर्षों से हम पे कृपा हुई तो हम लोग रथ यात्रा में सम्मिलित हुए, तो हमने देखा पिछले 4-5 साल से तो भगवान को खींचते थे और लेकर जाते थे, और भगवान पहुंच जाते थे शाम को वापस अपने स्थान पर। लेकिन इस बार पिछली बार क्या हुआ कि बलदेव जी, जैसे आपने देखा कभी क्रिकेट मैच, तो उसमें अगर कोई रन आउट होता है तो थोड़े से डिस्टेंस से रह जाता ना, उसका बैट लगता नहीं है, तो इस बार जिस लाइन पर मतलब जहां पर खड़ा होना था रथ को, तो वहां पर बलदेव जी का रथ, क्योंकि सबसे पहले बलदेव जी पहुंचते हैं, तो बस इसी तरह के डिस्टेंस से रन आउट हो गए, वो लगभग 1-2 मीटर पहले उनका रथ वहां खड़ा हो गया, और सुभद्रा जी का थोड़ा और पीछे था उनसे, लगभग 50-100 मीटर, 50 मीटर करीब, 20-25 मीटर करीब, और जगन्नाथ जी का रथ इस बार तो आधे रास्ते पे रुक गया, और सूर्यास्त के बाद वो खींचते नहीं, भगवान रुक गए तो बस रुक गए, अब जितना मर्जी खींचो चलेंगे नहीं, सबको रसना छोड़ना पड़ा, और फिर वहीं पर भक्तों ने अपने चाट चटाइयां बिछाई और भगवान का कीर्तन शुरू कर दिया, पूरी रात कीर्तन चला। जगन्नाथ जी की इच्छा नहीं थी कि मैं एक दिन में पहुंचू, अगले दिन पहुंचू, तो अगले दिन फिर हम लोगों ने वो लाखों जो लोग थे उसमें से कुछ हट गए, कोई दूर दूर से आते चले गए, बट फिर भी इतनी भीड़ थी हजारों संख्या में। फिर अगले दिन उन तीनों रथों को खींच खींच कर अपने स्थान पर लगाया, भगवान वहां पर पहुंचे और फिर सबको दर्शन दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इतनी सुंदर लीला है, बताया जाता है इस जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी से संबंधित इतनी सुंदर सुंदर कहानियां, सच्ची कहानियां हैं कि पूछे मत। जब भगवान बाहर अपना स्नान कर अपना दर्शन देते हैं, अपने सुंदर श्रृंगार में दर्शन देते हैं, तो अभी बताते हैं उनको एक हाथी जैसा राजवेश पहनाया जाता है भगवान जगन्नाथ जी को दोपहर के बाद। कहते हैं कि गणपति नाम के भक्त थे, गणपति भट्ट, इनको किसी ने बोला था कि जगन्नाथपुरी जाओ दर्शन करो, वहां पर जो भगवान है वो भगवान भक्तों के हिसाब से सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, जैसा दिखना चाहते हैं वैसे दिखते हैं, मतलब जैसा भक्त जाएगा भगवान वैसे दिखते हैं। तो ये गणपति भट्ट गणेश जी के भक्त थे एक्चुअली। इनको लगा ठीक है हम भी चलते हैं देख कर आते हैं भगवान कैसे हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे दिखते हैं कि नहीं। इच्छा बहुत थी, बहुत सुना था भगवान के विषय में। पहुंच गए और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो भगवान का दर्शन किया, सामने से थोड़े मायूस से हो गए, नहीं भाई ये तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, ये तो समझ नहीं आया, मायूस हुए और वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। उसी तरह क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ जी ने एक ब्राह्मण का रूप धर लिया और उस गणपति भट्ट के पास गए रास्ते में। कहते भैया क्या हुआ, कहते कुछ नहीं मत पूछो। कहते फिर भी बताओ क्या हुआ, कहते भाई दर्शन करने आए थे, जैसा सोचा था जितना सुना था वैसा नहीं लगा, हम तो सोच रहे थे कि भगवान कुछ ऐसे। कहते आओ ना एक बार दोबारा चलो दोबारा देखो। कहते नहीं नहीं, कहते नहीं चलो तो सही, लेकर गए। जैसे ही वहां पहुंचे और गणपति भट्ट ने भगवान जगन्नाथ जी को तो क्या देखते हैं कि भगवान तो हाथी के रूप में, मतलब गणेश जी के साथ सूंड निकाली हुई या पेट निकाला, अरे कहते ये तो भगवान हमारे ही है भैया। तो बड़े खुश हुए गणपति। तो ये भगवान की अपने भक्तों के साथ वहां पर बहुत सारी लीलाएं हैं। बाहर अगर आप देखेंगे पतित पावन जगन्नाथ जी भी, जो लोग अंदर नहीं जा सकते नॉन हिंदू, तो उनके लिए भगवान ने पतित पावन, मतलब भगवान जगन्नाथ जी का एक बहुत बड़ा स्वरूप, गेट पर ही है ताकि बाहर से लोग उनके दर्शन कर सकें, जो कि जगन्नाथ जी से अभिन्न है। तो बड़ी सुंदर उसकी भी लीलाएं नहीं बताने के लिए बैठे, बस बताना चाह रहे थे कि वो सुंदर सुंदर लीलाएं भक्तों के साथ सुंदर सुंदर लीलाएं घटित हुई हैं। उन सब लीलाओं से संबंधित आज काफी रिचुअल्स भगवान के साथ किए जाते हैं और हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की स्नान यात्रा जरूर देखें। अगर नहीं जा पाए तो टेलीविज़न इंटरनेट के थ्रू देखें, क्योंकि माध्यम आजकल अच्छे हो गए हैं कि हम देख सकते हैं भगवान की सुंदर स्नान यात्रा, जिसका उद्देश्य हमने बता दिया कि ऐसी लीला करते हैं भगवान जिससे कि वो लक्ष्मी जी को टाइम दे सकें या अपनी विरह की पीड़ा जो श्रीमती राधा रानी के प्रति है, वृंदावन के प्रति है, वहाँ के वासियों के प्रति है, उस अग्नि को शांत करने के लिए ये जो है अपने ऊपर भगवान जल छिड़कवाते हैं इस प्रकार, और भक्तों की सेवा लेते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, अभिषेक दिखाते हैं अपना कि मैं आज के दिन प्रकट हुआ था तो मेरा अभिषेक हो रहा है। और वैसे तो देखो जगन्नाथ जी का अभिषेक हम लोग उस तरह नहीं करते, लेकिन उस दिन आज के दिन किया जाता है अभिषेक। और ये सारा का सारा कार्य, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत प्यूरिफाइंग है। किसी भी व्यक्ति को अगर भगवान का दर्शन मिल रहा है, उनका अभिषेक देखने को मिल रहा है, उनका प्रसाद खाने को मिल रहा है, तो इस संसार में उससे बहुमूल्य चीज़ कोई नहीं, उससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है संसार में। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जो वहाँ हैं दर्शन कर रहे हैं, भाग्यशाली वो हैं जो कथा सुन रहे हैं, भाग्यशाली वो हैं जो घर जाके अभी इस दर्शन को देखेंगे, सब भाग्यशाली। तो आप सब भाग्यशालियों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जगन्नाथ स्नान यात्रा की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगन्नाथपुरी धाम की। हरे कृष्णा।